पृष्ठ संख्या 405 आखेट वर्णन। भारतीय कथा साहित्य में इस कथानक रूढ़ी का विशेष स्थान है। हिंदी सूफी कवियों ने भी इस रूढ़ी को गृहित किया है। मृगावती में आखेट प्रिय राजकुंवर एक दिन मृगया के लिए वन में जाता है। उसके साथ 100 घुड़सवार होते हैं। वहां वह अद्वितीय सतरंगी हरिणी को देखता है और उस पर मुग्ध हो जाता है। फिर कथा के अंत में चंद्रगिरी में एक दिन आखेट करते समय कुंवर हाथी से गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। दोनों रानियां भी उसके साथ सती हो जाती हैं। पद्मावत में भी नागमती सुवा संवाद खंड में वर्णित है, दिन 10-5 तहां जो भय राजा कुतहूं अहेरे गए। जैसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 34। पद्मावत में एक अन्य स्थल पर राजा रत्नसेन के शिकार का उल्लेख पृष्ठ संख्या 406 है। चित्तौड़ में वियोगिनी नागमती का राजा की बाट जोहते हुए 1 वर्ष हो जाता है। उसके विलाप से पशु पक्षी विकल हो जाते हैं। अंत में आधी रात को एक पक्षी नागमती से दुख का कारण पूछता है। नागमती उससे रत्नसेन के पास पहुंचाने के लिए अपना संदेश कहती है। वह पक्षी नागमती का संदेश लेकर सिंघल द्वीप जाता है और समुद्र के किनारे एक पेड़ पर बैठता है। संयोग से रत्नसेन शिकार एक खेलते खेलते उसी पेड़ के नीचे जा खड़ा होता है। सुअवसर पाकर पक्षी पेड़ पर से नागमती की दुख गाथा और चित्तौड़ की हीन दशा का वर्णन करता है। मधुमालती में भी आखेट का रोचक वर्णन है। मंजनकृत मधुमालती इलाहाबाद सन 1961 ईस्वी छंद 464-466। एक दिन कुमार मनोहर शिकारियों को बुलाता है। राजकीय बुलावा सुनकर सब शिकारी उपस्थित होते हैं। कुमार शिकारियों से पूछता है, यहाँ कहीं निकट आखेट है? वे उत्तर में कहते हैं, यहाँ से 2.5 कोस पर अनेक जंतुओं की अति अधिकता है। झांख, मृग, महेश, वाराह, सांभर, लगुन और रोज, नील गाय बहुतेरे हैं। कुमार आदेश देता है, 5 जनों को भेजो और यदि शिकार का घात हो तो आकर बताओ। शिकारी दूसरे दिन प्रातः काल जाते हैं और बताते हैं कि शिकार का घात है और वे राजकुमार मनोहर को उस समय चलने की प्रार्थना करते हैं। राजकुमार और उसका मित्र ताराचंद आखेट के लिए चलना स्वीकार करते हैं। यह सुनते ही सभी आखेट करने वाले दौड़ पड़ते हैं और शिकारी कुत्तों एवं बकचीतों को आगे रवाना करते हैं। कहार, फंदे और जाल कंधों पर रखते हैं और बहुत से धनुर्धर शर संधान कर चल पड़ते हैं। तदनंतर गोंड जंतुओं को निकल भागने से रोककर शिकारियों की ओर चलाते हैं और धनुष चलाने वाले आगे होकर उन्हें भगाते हैं। इस प्रकार भीतर से वे कराल हाका करते हैं और बाहर बाहर चारों ओर फंदा देते हैं। प्रत्येक पेड़ पर जाकर धनुर्धर बैठ जाते हैं। तत्पश्चात वन में आग लगा दी जाती है। पृष्ठ संख्या 407। झांख व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगते हैं। पेड़ों पर बैठे हुए समस्त धनुर्धर उन्हें अपने तीरों का निशाना बनाते हैं। धनुर्धरों के बाणों की वर्षा से झांख और अधिक विवल हो उठते हैं। बाण खाकर घायल भालू उद्विग्न होकर चक्कर खाने लगते हैं और भैंसे आहत होने पर गिरकर पड़े पड़े खुर ताल लगाने लगते हैं। बगचीते बहुत से मृगों को मारते हैं और शिकारी कुत्ते अनेक वाराहों को पिछाड़ देते हैं। बहुत से जंतु जीवित पकड़कर लाए जाते हैं और बहुत से बाणों के विष से आक्रांत होकर मर जाते हैं। आखेट खेलकर दल बल सहित कुमार मनोहर घर लौट आता है। एक चित्रावली में कुंवर को एक बहुत अच्छा अश्वारोही बताया गया है, जिसे आखेट में अत्यधिक रुचि थी। एक पारधी सदैव उसके पास रहता था, जो उसे शिकार की सूचना देता था, फिर चारों ओर से घेर कर पशु पक्षियों को मारता था। अस अहेर कह मन चित बांधा, निसि दिन रही पारधि राधा। पहले पारधि जाय बन, घात करे चहु फेर। सवरी कुंवर तब कटक ले, खेले जाय अहेर। 2 एक दिन वह शिकार खेलने जाता है, परंतु रास्ता भूल जाता है और किसी देव की मढ़ी में जा सोता है। यह देव उसकी असहाय अवस्था देखकर उस पर दया करता है और हर प्रकार से उसकी रक्षा का भार लेता है। ज्ञानदीप में भी आखेट की चर्चा की गई है। एक दिन ज्ञानदीप आखेट खेलते हुए मार्ग से भटक जाता है। सिद्धनाथ जोगी उसे प्रतिभाशाली एवं योग्य देखकर उसे अपना शिष्य बना लेते हैं। 1 पहर एक मह खेली अहेरा, सभय कटक घर आई। दुवो कुंवर जल क्रीड़ा, लागे सरित नहाई। मंजनकृत मधुमालती इलाहाबाद सन 1961 छंद 466 पृष्ठ 411। दो उस्मान चित्रावली नागरी प्रचारणी सभा सन 1912 ईस्वी पृष्ठ 25 पृष्ठ संख्या 408। इंद्रावती में मधुकर खंड में आखेट का वर्णन इस प्रकार दिया गया है। एक दिन राजा गए अहेरे देखा एक मृग कहनेरे मृग चला मधुकर है हाका मृग पवन दहु रह कहाँ का चला मृग के पाछे सोई छुटा लोग ना पहुँचा कोई जात जात एक है वन महपरा देखा बिरछ एक हतिहरा भयव कुरंग कुरंग हेराना तरीवर तरे आई पछताना ऊंचा तरवर देख कै और गंभीरो छाह सुख पायो दुख भूला भा आनंद मन माह। एक इंद्रावती के उत्तरार्ध के अंत में राजकुंवर को शिकार खेलते हुए दिखाया गया है। राजकुंवर के कालिंजर राज्य में लौट आने पर पटरानी सुंदर प्रसन्न हो जाती हैं। इंद्रावती और सुंदर दोनों अत्यंत प्रेम से रहने लगते हैं। एक बार राजकुंवर आखेट करके थका हुआ एक वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहा होता है, तभी वह एक तोते से एक विरह की कथा सुनता है। दो फारसी सूफी काव्य की सुप्रसिद्ध मसनवी मंतिकुत्तैर में शिकार विषयक कथाएं उल्लिखित हैं। उदाहरणार्थ एक कथा 3 इस प्रकार है कि एक बादशाह अपने साथियों के साथ वन में शिकार खेल रहा था। उसके साथ एक सुंदर शिकारी कुत्ता भी था। कुत्तों को स्वर्ण एवं रजत के आभूषणों से सुसज्जित किया हुआ था। उसका पट्टा मोतियों से अलंकृत था और गर्दन में रेशमी डोरी थी। बादशाह कुत्ते पर परम प्रसन्न था और स्वयं उसकी डोरी अपने हाथ में रखे हुए था। बादशाह ने एक शिकार को देखकर कुत्ते को उसकी ओर भगाया। रास्ते में एक अस्थि पृष्ठ संख्या 409 पड़ी हुई थी। कुत्ता अस्थि को देखकर वहीं रुक गया और आगे न बढ़ा। उसे वहां ही खड़ा देखकर बादशाह आग बबूला हो गया। क्रोध में बोला, इस नीच कुत्ते को यहीं छोड़ दो। यह साधारण कुत्तों की भांति गिरी पड़ी वस्तुओं को खाता है। यह नीच हड्डी के पीछे भागता है। कुत्ते के रक्षक ने कहा, हुजूर, कुत्ते का सारा शरीर आभूषणों से लदा हुआ है। आज्ञा हो तो इन्हें उतार लूं। बादशाह ने कहा, नहीं, इनको मत उतारो। शायद इनको देखकर वह अपने आप को फिर से पहचान ले और उसे याद आ जाए कि यह मुझ जैसे बादशाह से जुदा कर दिया गया है। अंत में सूफी कवि अत्तार यह नुक्ता लिखते हैं, ए दर अव्वल आशनाई याफ्ता व आखिर अस गफलत जुदाई याफ्ता पाए दर इश्के हकीकी नेह तमाम। ख्वाजा फैदुद्दीन अत्तार मंतिकुत्तैर नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 48। एक नूर मोहम्मद इंद्रावती पहला भाग पृष्ठ 100-101। दो डॉक्टर सरला शुक्ल जायसी के परवर्ती हिंदी सूफी कवि और काव्य लखनऊ संवत 2013 विक्रम पृष्ठ 458। तीन ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार मंतिकुत्तैर नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 147-148। अर्थात हे मानव, तूने पहले प्रभु से संबंध स्थापित किया और फिर सांसारिक विषयों में फंसकर प्रभु से नाता तोड़ लिया। अरे मूर्ख पथ भ्रष्ट पुरुष, तू अलौकिक प्रेम को अपना। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने अपनी मसनवी की सुप्रसिद्ध सर्वप्रथम कथा बादशाह का दासी पर आसक्त होना, उसे खरीद लेना और दासी का अस्वस्थ होना में उपर्युक्त कथानक रूढ़ी का आश्रय लिया है। इत्तिफाकन शाह शुद्ध रोजे सवार बा खवासे शेष अस बहरे शिकार बहरे सैदे भी शुद्ध उबर कोहो दष्ट नागहा दर्दामे इश्के उसैद गश्त। मसनवी मौलवी मानवी पैराहने यूसुफी नवल किशोर प्रेस लखनऊ प्रथम भाग पृष्ठ 9-10 पृष्ठ संख्या 410। अर्थात इत्तिफाकन एक शह हुआ एक दिन सवार और मुसाहिब दो ले गया बहरे तीन शिकार चार ढूंढता जंगल में फिरता था शिकार इश्क ने उसको किया अपना शिकार। राक्षस राक्षसों का उपयोग भी एक प्रकार की कथानक रूढ़ी है। राक्षसों अथवा दैत्यों ने कहीं कहीं तो पात्रों को सुख पहुंचाया है और कहीं कहीं दुखों के वात्या चक्र में डाल दिया है। ये साधक एवं बाधक दोनों रूपों में हमारे सामने आए हैं, परंतु उपर्युक्त रूप में बहुत अधिक। मृगावती में नायक राजकुंवर सुबुधेया नगर के राजा देवराय की कन्या रुक्मिणी की रक्षा सात शीशों तथा 14 भुजदंडों वाले क्रूर राक्षस से उसका काम तमाम करके करता है। सात शीश 14 भुज दंडा, जनी रावण आए बरबंडा। रुक्मिनी कहा यह राक्षस सोई, ले आया गहबीर के रोई। कंवर कहा तू सर नहीं मोरी, हाँ मोरो यही मस्तक तोरी। 5 इत्यादि। पद्मावत का राक्षस अत्यधिक दुष्ट है, वह रत्नसेन के जहाजों को ध्वस्त करता है और अतल तल में डुबाने का निंदनीय कार्य करता है। जायसी के विशालकाय राक्षस की कल्पना लोक रुचि और साहित्य रूढ़ी के अनुरूप है। पद्मावतकार के शब्दों में लंका कर राक्षस अतिकारा, आवे चला होई अंधियारा। 5 मुंड 10 बाही ताही, दही भासाव लंक जव दाही। धुआं उठे मुख मांस संघाता, निकसे आगी कहे जो बाता। फेंकरे मुंड चमर जनु लाए, निकसी दांत मुंह बाहर आए। 1 सहसा अचानक, 2 सभासद, 3 मृगया, 4 जिसका शिकार किया जाए, 5 कुतुबन कृत मृगावती, प्रयाग शक 1885 पृष्ठ 98 पृष्ठ संख्या 411। देह रीछ के रीछ डेराई, देखत दिष्टि ढाई जनु खाई। राते नैन नियर जो आवा, देखी भयावन सब डर खावा। धरती पाय सरग सिर, जनहु सहस्त्र बाहु। चांद सुर और नखत मह, अस देखा जस राहु। जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 173। मधुमालती का राक्षस भी बड़ा दुष्ट है, वह चिर विसराऊ नगर के राजा चित्रसेन की कन्या प्रेमा को उठाकर अपनी चौखंडी में ले जाता है। अंत में कुमार मनोहर उसका काम तमाम कर देता है। तिमी राक्षस पुहमी परेउ, कथा परिहरे परान। मंझन कृत मधुमालती इलाहाबाद 1961 पृष्ठ 233। तदनंतर कुमार मनोहर और प्रेमा यहाँ से चलकर चित विसराऊ नगर आ गए। चित्रावली उस्मान चित्रावली नागरी प्रचारणी सभा 1912 पृष्ठ 26-27 में वर्णित राक्षस अत्यंत सहृदय है। वह नायक सुजान की रक्षा करता है और साथ ही सुजान को चित्रावली के यहाँ ले जाता है। इस प्रकार वह कथा वस्तु को गतिशील बनाने तथा उसे एक निश्चित दिशा देने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य करता है। भाषा प्रेम रस में उल्लिखित राक्षस दुखदायक है। वह खल एक रात्रि के समय सोती हुई चंद्रकला को उठाकर ले जाता है। उसे किसी पर्वत पर जहाँ उसके 40 घर थे जाकर उतारता है। वहाँ वह अत्यंत वेदना का अनुभव करती है। अंत में प्रेमसेन चंद्रकला के पास पहुँच जाता है और उसे बंधन मुक्त कराता है। फारसी सूफी काव्य में यही राक्षस देव, देव फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है राक्षस, शैतान है जो मानव जाति को दुख देता है और उसके लिए कांटे बोता है। पृष्ठ संख्या 412। मौलाना रूम ने इस संबंध में बड़ी सुंदर कहानी मसनवी ए मौलवी ए मानवी, पैराहने यूसुफ, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, द्वितीय भाग, पृष्ठ 177-190 वर्णित की है, जो संक्षेप में इस प्रकार है। एक बार खलीफा अमीर मुआविया 2 अपने कमरे के एक कोने में सो रहे थे। वे लोगों की मुलाकातों से थक कर चूर हो गए थे, इसलिए कमरे का द्वार अंदर से बंद कर लिया था। एकाएक एक व्यक्ति ने जगा दिया और जब उनकी आंख खोली तो छिप गया। आपने अपने जी में कहा कि इस कमरे में तो कोई भी न आ सकता था, फिर यह कौन था जिसने ऐसा साहस किया? आपने उसकी खोज में सारे कमरे का चक्कर लगाया तो पर्दे की आड़ में एक व्यक्ति को देखा। आपने फरमाया, अरे तू कौन है, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया कि मेरा नाम अबलीस है। आपने पूछा कि तूने मुझे क्यों जगाया, सच सच बता। उसने कहा, हजरत नमाज का समय समाप्त होने को है, अब मस्जिद की ओर लपकना चाहिए। आपने कहा कि नहीं, तेरा यह उद्देश्य कभी नहीं हो सकता कि तू नेकी के काम में मेरा सहायक हो। भला यह भी कोई बात है कि चोर मेरे घर आए और कहे कि मैं पासवान प्रहरी हूँ? मैं चोर की बात का क्यों कर विश्वास कर लूँ? अरे तू बड़ा वंचक है, तू मुझ पर इतना कृपालु कैसे हो सकता है? अबलीस ने कहा कि मैं फरिश्ता भी रह चुका हूँ, आराधना और साधना पथ को पार भी कर चुका हूँ, भला पुरानी आदत को एकदम कैसे बदल सकता हूँ? मैं भी आध्यात्मिकता की शराब में मस्त रह चुका हूँ। 2 अमीर मुआविया ने सन 60 हिजरी सन 679 ईस्वी में 75 साल की आयु में 20 वर्ष गवर्नरी और 20 साल खिलाफत करने के पश्चात दुनिया से कूच किया। निस्संदेह वे बहुत बुद्धिमान एवं राजनीतिज्ञ थे। अल्लामा मुहिउद्दीन मिस्री, तारीख़ इस्लाम, उर्दू अनुवाद, लखनऊ, तृतीय भाग, पृष्ठ 18, और उस परम प्रियतम परमात्मा का पृष्ठ संख्या 413, प्रेमी रह चुका हूँ, यह सब इतनी जल्दी कैसे भूल सकता हूँ। खलीफा ने कहा कि तुझसे भलाई की आशा करना बड़ी भूल होगी, तू तो सर्वथा आग है, तुझे बिना जलाए चैन कहाँ, भला वह कौन है जिसका दामन तेरे हाथ से चाक नहीं। बातें न बना, मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं। अरे फरेबी, तू सच सच बता, तूने मुझे क्यों जगाया। तू बहानाबाजी से काम न ले, अभी तू ठीक ठीक बात बता दे। अब्लीस बोला कि जो स्वाभाविक रूप से शक्की हो वह कभी सच्ची बात पर विश्वास नहीं करता, यह सब तेरे स्वभाव का दोष है जो तू मुझसे निर्दोष एवं निष्कलंक व्यक्ति को दोषी समझता है। खलीफा ने कहा कि ये सब अनर्गल बातें हैं, जब तक तू सच न बोलेगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब्लीस ने उत्तर दिया कि तू तो मिथ्या संदेश से अभिभूत है, अतएव सच को भी झूठ समझ रहा है। खलीफा ने कहा कि हजरत मुहम्मद ने फरमाया है कि झूठ दिलों में खोट पैदा करता है और सच संतोष उत्पन्न करता है। झूठी बात से चित्त शांत नहीं होता, सच्ची बात ही से दिल चैन पाता है। अरे धिक्कृत कुत्ते, तू सारी बात साफ साफ बता दे और इधर उधर की बातें ना बना। मैं हर एक से वह सुनना चाहता हूँ जो उसकी प्रकृति के अनुकूल हो। चूंकि तू शैतान है, तुझसे कभी उपकार की आशा नहीं की जा सकती। इस प्रकार शैतान ने अनेक बातें बनाकर खलीफा को बातों में लाना चाहा, परंतु उसकी एक न चली। अंततः शैतान ने दांत चबाकर कहा कि ले सुन, हाँ मैंने तुझे बेदार किया ताकि तू समय पर नमाज पढ़ ले। यदि तेरी नमाज का वक्त जाता रहता तो मारे दुख के तेरी आंखों से वर्षा की झड़ी लग जाती। तू अत्यधिक दुखी होकर रोता, पीटता, चीखता, चिल्लाता, तुम्हारा वह पश्चाताप एवं अनुताप 100 नमाजों के फल को भी मात कर देता। इस संबंध में मौलाना रूम की मसनवी में एक कथा वर्णित है। वह कथा इस प्रकार है कि एक व्यक्ति मस्जिद में दाखिल हो रहा था, देखा कि लोग बाहर चले आ रहे हैं। पूछने लगा कि क्या जमात हो चुकी जो लोग मस्जिद से बाहर आ रहे हैं। एक ने कहा, हजरत पैगंबर जमात से नमाज अदा फरमा चुके। अरे मूर्ख, तू कहाँ चला, हजरत तो सलाम भी फेर चुके। उसने जो हाय की तो धुआं बाहर पृष्ठ संख्या 414 निकलने लगा। उसकी आह से दिल के खून की गंध आने लगी। यह देखकर किसी नमाजी ने कहा कि ए नमाज खोने वाले, अपनी यह आह तू मुझे बख्श दे, मैंने अपनी नमाज तुझे बख्शी। उसने कहा, अच्छा, आह मैंने दी और नमाज स्वीकार कर ली। उस व्यक्ति ने वह आह बड़े गर्व से ले ली और घर की राह ली। रात को स्वप्न में दिव्यवाणी हुई कि तूने आबे हैवा अमृत मोल ले लिया, तेरे इस अदल बदल के सम्मान में सारी सृष्टि की नमाज स्वीकार हो गई। मसनवी मौलवी मानवी पैराहने यूसुफी, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, द्वितीय भाग, पृष्ठ 189। मैंने तुझे जगा दिया ताकि तू इस फल से वंचित रहे। यह सुनकर खलीफा ने फरमाया कि अब तूने ठीक बात बताई, तूने जो मुझे जगाया वह वस्तुतः सुलाने के लिए था। स्वप्न, स्वप्न दर्शन एवं उसका रहस्योद्घाटन तथा स्वप्न में फरिश्ता, देवता अथवा बुजुर्ग वृद्ध प्रतिष्ठित पुरुष का दर्शन देना, इस प्रकार की स्वप्न विषयक कथानक रूढ़ी के प्रयोग का प्राचुर्य फारसी कथा साहित्य में रहा है और इसके उदाहरण भारतीय कथा साहित्य में भी उपलब्ध होते हैं। फारसी प्रेमाख्यानक काव्यों में स्वप्न संबंधी रूढ़ी के सुंदर और परंपरा प्रचलित रूप दर्शनीय हैं। कतिपय उदाहरण ऐसी रूढ़ी के स्पष्टीकरण के लिए पर्याप्त होंगे। स्वप्न दर्शन एवं उसका रहस्योद्घाटन। कुरान की सूरह यूसुफ मक्की रुकू 12 आयत 4-5 में वर्णित है कि जब यूसुफ ने अपने पिता याकूब से कहा, हे पिता, मैंने स्वप्न में 11 तारों, सूर्य और चंद्र को देखा है कि वे मुझे दंडवत करते हैं। पृष्ठ संख्या 415। पिता ने कहा, हे पुत्र, अपना स्वप्न अपने भाइयों को न बताना, ऐसा न हो कि वह कोई षड्यंत्र रचे, क्योंकि शैतान मानव का शत्रु है। 2. स्वप्न फल के अनुरूप 11 तारों और चांद एवं सूर्य का अर्थ 11 भाई एवं माता पिता थे और सिजदे 3 का अभिप्राय यह था कि वे सब यूसुफ की आज्ञा का पालन करेंगे और उसके सम्मुख नम्रता पूर्वक माथा झुकाएंगे। हुआ भी यही, यूसुफ मिस्र के सिंहासन पर आरूढ़ हुए और 11 भाइयों एवं हजरत याकूब और उसकी पत्नी ने उनका सम्मान किया। मौलाना जामी ने इसी स्वप्न का उल्लेख अपनी मसनवी यूसुफ जुलेखा में किया है। बहुफ्ता ख्वाब दीदम मेहरो माहरा दुरुखशंदा कवाकिब याजदारा की अक्सर दाद ताजीम बदादंद बजीजदा पेशे रुए मसर नहादंद फिदर गुफ्ता की बस कुंजी सखुन बस मगो ई ख्वाब रा जिनहार बाकस मुबादा ई ख्वाब रा खां बदानंद बबेदारी सद आजारत रसानंद। 4 अर्थात यूसुफ ने अपने पिता हजरत याकूब से कहा, मैंने सपने में देखा कि चांद सूर्य और चमकते हुए 11 तारे सब ने मेरा मान किया और मुझे प्रणाम किया। यह सुनकर पिता ने कहा, बस इस बात की चर्चा मत कर, तू कभी इस स्वप्न का उल्लेख किसी से न कर, ऐसा न हो कि तेरे भाई इसे जान जाएं और तुझे हानि पहुंचाएं। 1 कुरान सूरह 12:4 2 वही संख्या 12:5 3 प्रणाम 4 मौलाना जामी यूसुफ जुलेखा नवल किशोर प्रेस कानपुर सन 1896 ईस्वी पृष्ठ 112 पृष्ठ संख्या 416 शेख निसार कृत यूसुफ जुलेखा में जिसकी कथा उक्त प्रसिद्ध फारसी काव्य यूसुफ जुलेखा के आधार पर लिखी गई है, उपर्युक्त स्वप्न का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। यूसुफ रैन सपन एक देखा बहुर पिता तिन कहा सरेखा जानहु ग्रह एकादश आए रवि ससिमिल मोहिशीस नवाए सुन याकूब सुखीन हुलासा राज पाठ सुख भोग विलासा जग मा होहु महीधर राजा शुद्ध बुद्ध नित आगर साजा पै यह सपन सुने नहीं भाई नाहिन हो ही शत्रु दुखदाई। शेख निसार यूसुफ जुलेखा आदि खंड छंद 26 आदि। कवि नसीर कृत प्रेम दर्पण में भी इसी स्वप्न की चर्चा है। इंद्रावती उत्तरार्ध में भी राजकुमार की पहली विरहग्रस्त रानी सुंदर भी स्वप्न में शुभ सूचक सूर्य चंद्र और 11 तारे देखती है। डॉक्टर सरला शुक्ल जायसी के पूर्ववर्ती हिंदी सूफी कवि और काव्य लखनऊ संवत 2013 विक्रम पृष्ठ 457। पद्मावत ने भी चंद्र सूर्य विषयक एक स्वप्न का उल्लेख बसंत खंड में इस प्रकार हुआ है। पद्मावती सो मंदिर पैठी हसत सिंहासन जाई बैठी निसी सूती सुनी कथा बिहारी भा बिहान कह सख हंकारी देव पूज जस आयु काली सपन एक निसी देखियु आली जन ससी उदय पुरुष दिसि लीन्हा ओ रवि उदय पछियु दिसि कीन्हा पुनि चली सूर चांद पह आवा चांद सुरुज दुहु भयो मेरावा दिन और राति भये जनु एका राम आई रावण गढ़ छेका तस किछु कहा न जाई निखेधा अर्जुन बान राहु गा बेधा जानहु लंक सब लूटी हनु विधंसी बारी जागी उठियूं अस देखत सखी कहु सपन बिचारी। 3 जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 85। स्वप्न का विचार करके सखी ने कहा कि कल जो वह दिन जब बसंत पंचमी के दिन पद्मावती अपनी सखियों सहित पूजा के बहाने राजा के दर्शनार्थ मंडप में गई, तुम देव के दरवाजे पृष्ठ संख्या 417 पर गई थी और अनेक प्रकार से पूजन करके उसको मनाया था, वही देव आकर तुम पर रात्रि में प्रसन्न हुए हैं। हे रानी, सूर्य तो पुरुष है और तुम चंद्रमा हो, भगवान ऐसा वर लाकर तुमसे मिलाएगा। पश्चिम खंड से कोई राजा आया है, वही तुम्हारा वर होगा, तुम्हारे लिए कुछ युद्ध होगा और राम रत्नसेन रावण गंधर्वसेन से संग्राम करेंगे। चंद्र और सूर्य का विवाह होगा, वाटिका का विध्वंस होगा और राहु का भेद होगा। जैसे उषा को अनिरुद्ध मिले थे वैसे ही तुमको रत्नसेन प्राप्त होगा। जो पूर्व जन्म का लिखा हुआ है अदृष्ट अथवा भाग्य है वह नष्ट नहीं हो सकता। जो तुम्हारे लिए सुख सौभाग्य पान फल रस आदि का भाग लिखा हुआ है वह आज या कल ही में प्राप्त होना चाहता है, ऐसा ही स्वप्न का संयोग अर्थात फल है। जायसी ग्रंथावली पद्मावत बसंत खंड पृष्ठ 85। मौलाना जामी कृत यूसुफ जुलेखा में एक स्वप्न का विशेष उल्लेख है जिसके रहस्य का उद्घाटन करने में हजरत यूसुफ ने अपनी अपूर्व स्वप्न विचार शक्ति का परिचय दिया। हजरत यूसुफ कारावास में बंदियों को उनके सपनों का फल बताया करते थे और वे सर्वथा ठीक होते थे। उस समय मिस्र के बादशाह ने एक स्वप्न में देखा कि 7 मोटी और दुबली गायें प्रकट हुई और दुबली गायें मोटी गायों को खा गईं। फिर 7 हरी भरी और 7 शुष्क बालियां अभिव्यक्त हुई और शुष्क बालें सब्ज बालों पर लिपट गईं और उनकी हरियाली और तरी को चूस लिया। बादशाह ने जब यह स्वप्न सभासदों को सुनाया तो सब इसको सुनकर चकित रह गए। स्वप्नफल बताने वाले सुप्रसिद्ध पारंगत व्यक्तियों को बुलाया गया और उस स्वप्न का रहस्य पूछा गया, परंतु किसी ने संतोषजनक उत्तर न दिया। उस समय एक साकी, जो पहले हजरत यूसुफ के साथ बंदी गृह में रहा था और उनकी बेजोड़ स्वप्न विचार शक्ति को जानता था, बादशाह के दरबार में गया और बादशाह से हजरत यूसुफ का उल्लेख किया। इस पर बादशाह ने साकी को हजरत यूसुफ से स्वप्न का फल पूछने के लिए भेजा। हजरत पृष्ठ संख्या 418। यूसुफ ने स्वप्न को सुनकर कहा कि 7 मोटी गायें और 7 सब्ज बालें, वे 7 वर्ष हैं जिनमें बहुत अच्छी खेती होगी और जनता सुखी होगी, और 7 दुबली गायें और 7 सुखी बालें, वे 7 वर्ष हैं जिनमें भयानक अकाल पड़ेगा और जनता अत्यंत दुखी होगी, और पिछले 7 वर्षों की शुष्कता और अकाल से पहले 7 वर्षों की हरियाली और प्रफुल्लता सर्वथा जाती रहेगी। बादशाह को यह ताबीर स्वप्न फल बहुत पसंद आया और उसे अपना मंत्री नियुक्त किया। ब पहलुए खुदश ब तख्त बनिशानद, ब पुरुष सहाय खेश बा वै सखुन रानद, नुखुस्त अस खाबे खुद पुरसीद ताबीर, तर आमद लाले नौशीदत ब तकरीर। मौलाना जामी, यूसुफ जुलेखा, नवल किशोर प्रेस, कानपुर, सन 1896 ईस्वी, पृष्ठ 262। अर्थात बादशाह ने अपने बराबर उसे सिंहासन पर बैठाया और स्वप्न संबंधी बातें पूछी। उसने हजरत यूसुफ से स्वप्न का फल पूछा। हजरत यूसुफ के विचारानुसार 7 साल अत्यधिक वर्षा हुई और फसल खूब अच्छी हुई और फिर 7 वर्ष तक सूखा पड़ा। कवि शेख निसार की यूसुफ जुलेखा और कवि नसीर विरचित प्रेम दर्पण में उपर्युक्त स्वप्न की ऐसी ही चर्चा है जैसी जामी कृत यूसुफ जुलेखा में हुई है। स्वप्न में किसी फरिश्ता या बुजुर्ग का दर्शन देना। फारसी सूफी प्रेम गाथाओं में से 2 उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं जिनमें फरिश्ता देवता पात्र के रूप में मुख्य भूमिका निभाते हैं। मंतिकुत्तैर में एक प्रतिष्ठित शेख ने स्वप्न में देखा कि वह जा रहा था, उसके निकट एक फरिश्ता आया और प्रश्न किया कि कहाँ जाने का विचार है। शेख ने उत्तर दिया कि मैं खुदा के दरबार में जा रहा हूँ। फरिश्ते ने कहा कि शर्म कर, तू तो सांसारिक धंधों में फंसा हुआ है, भला तू वहाँ कैसे प्रविष्ट हो सकेगा। जो कुछ तेरे पास है सब का सब दान के, पृष्ठ संख्या 419, रूप में दे दे और सांसारिक वस्तुओं से संबंध विच्छेद कर ले। अगले दिन शेख ने जो कुछ उसके पास था सब का सब खुदा की राह में लुटा दिया। उसके पास शरीर पर धारण करने के लिए केवल नमदे का एक टुकड़ा रह गया, शेष सब वस्तुएं दान में दे दी। दूसरी रात जब शेख सोया तो फरिश्ता ने पुनः स्वप्न में दर्शन दिए। फिर उसने पूछा कि तू कहाँ जाना चाहता है। शेख ने उत्तर दिया कि प्रभु के सामीप्य का इच्छुक हूँ। फरिश्ता ने कहा कि इस नमदा के टुकड़े को धारण करके तू कैसे वहां जा सकता है, यह भी तो एक सांसारिक वस्तु है, यह भी तो छल छंद का वस्त्र है। क्या तू नहीं जानता कि एक तुच्छ सी सांसारिक वस्तु हजरत ईसा के मार्ग में बाधक हुई थी। एक, तूने तो नमदे के टुकड़े को धारण किया हुआ है, अतः उठते ही उसने नमदे के टुकड़े को जला दिया। संक्षेप में उसने उस रात स्वप्न में देखा कि वही फरिश्ता उसके पास आया और कहा कि अब तूने सब कुछ खुदा की राह में न्योछावर कर दिया है, तू इसी स्थान पर बैठ जा और इस स्थान से मत हट, अब खुदा स्वयं यहाँ आएगा। चू हमा सुए हक आमद रुए तू, हक खुदा आयद बेशक अकनु सुए तू। दो, अर्थात जब तूने अपनी सब वस्तुएं खुदा की राह में न्योछावर कर दी हैं तो निस्संदेह अब खुदा स्वयं तेरे पास आएगा। एक, जब हजरत ईसा इह लोक से गए तो उनके आंचल में एक सुई लगी रह गई। इस सुई के पास होने के कारण उन्हें खुदा ने चौथे आकाश से आगे जाने से वर्जित कर दिया। दो, ख्वाजा अत्तार, मंतिकुत्तैर, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, पृष्ठ 133-134। मौलाना रूम ने भी उपयुक्त कथानक रूढ़ी को व्यवहित करके अधोलिखित कथा को गति और विस्तार दिया है। एक व्यक्ति को उत्तराधिकार में विपुल धन प्राप्त हुआ। उसने कुछ ही समय में सब कुछ उड़ा दिया। सच है, बिना परिश्रम के प्राप्त हुए धन की, पृष्ठ संख्या 420, कौन परवाह करता है। वह उल्लुओं के समान वन में समय काटने लगा। उसके लिए जीवन दूभर हो गया। उसने प्रार्थना की कि हे भगवान, तूने दूसरा सामान तो ले लिया, अच्छा मौत का सामान ही भेज दे। मैं निर्धन होकर फाके काट रहा हूँ और परम दुखी हूँ। उसने रात को स्वप्न में देखा कि एक फरिश्ता कहता है कि तू चिंता न कर, तुझे मिस्र नगर में धन प्राप्त होगा। मिस्र को जा, वहाँ तेरा काम बन जाएगा। प्रभु ने तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अमुक ग्राम में एक बहुत बड़ा कोष है, उसकी खोज में तुझे मिस्र जाना होगा। तू बगदाद से होता हुआ शीघ्र ही मिस्र को जा और उसे प्राप्त कर। यह शुभ समाचार सुनकर वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ और बगदाद से मंजिलें तय करता हुआ मिस्र पहुंचा। परंतु वहां पहुंचते पहुंचते उसके पास पैसा टका कुछ भी न रहा और क्रूर पेट ने विवश किया कि वह किसी के आगे हाथ फैलाए। उसने अपने जी में कहा कि अच्छा होगा यदि वह रात्रि के समय भीख मांगे। रात्रि के समय भीख मांगने के लिए कभी कदम आगे बढ़ाता था और कभी पीछे हटाता था और अपने दिल में सवाल करता कि अब सवाल करूं या भूखा प्यासा सो जाऊं। अभी यह सोच ही रहा था कि एक कोतवाल ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया और उसे खूब पीटा। रोते पीटते चीखते और चिल्लाते हुए उसने कोतवाल से कहा कि न मैं चोर हूँ और न जेब कतरा, मैं तो परदेशी हूँ और बगदाद का वासी। तत्पश्चात उसने अपने स्वप्न की चर्चा की। कोतवाल को उसकी बात सच्ची मालूम हुई। कोतवाल ने कहा, कमाल है, तुझे तो बगदाद में मिस्र का कोष नजर आया, परंतु मैंने मिस्र में कई बार यह स्वप्न देखा कि बगदाद में एक गुप्त कोष है। दर फुला कूदर फुला मोजा दफी, बुद आ खुद ना में कुएं आ हसी। मसनवी मौलवी मानवी पैराहने यूसुफी, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, षष्ठ भाग, पृष्ठ 283। अर्थात वह कोष अमुक कूचा और जगह में गड़ा हुआ है, वही नाम उसी दुखी के कूचे का था। पृष्ठ संख्या 421। और फिर कहा, हस्त दर खाना फलाने रह बजो, नाम खाना गुफ्तो नाम कुए ऊ। मसनवी मौलवी मानवी पैराहने यूसुफी, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, षष्ठ भाग, पृष्ठ 283। अर्थात हे फैलाने घर में जा जाकर ढूंढना, उसके घर का नाम और कूचा का लिया। जब उसे पता चला कि बगदाद में उसके अपने घर ही में गंगा है, तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, वह अपना दुख भूल गया। फारसी साहित्य में फरिश्तों में जिब्राइल फरिश्ता स्वप्न में दर्शन देने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये पैगंबरों विशेषकर मोहम्मद साहिब के पास ईश्वर का संदेश ले जाते थे। इसी प्रकार फारसी प्रेम कथाओं एवं सूफी काव्यों में बुजुर्ग, पीर, गुरु, सिद्ध सूफी आदि स्वप्न में दर्शन देकर सहायता करते हैं। मंथी कुत्तैर में कई कथाओं में उक्त सिद्ध पुरुषों ने दर्शन दिए हैं। उदाहरणार्थ एक कथा द्रष्टव्य है। एक प्रेमी रात्रि के समय रोते रोते सो गया। सिद्ध सूफी शिबली, बगदाद के बहुत बड़े सूफी, उनकी मृत्यु 31 जुलाई 946 ईस्वी को हुई। हकायके हिंदी, नागरी प्रचारणी सभा, काशी, संवत 2014, पृष्ठ 112 ने स्वप्न में उसे दर्शन दिए और पूछा कि तू क्यों रोता था। उसने कहा कि ए शेख, मेरा एक मित्र था, उसके अपूर्व सौंदर्य को देखकर ही मैं जीता था। वह प्राण त्याग गया है, अतएव मैं उसके विरह में मरता हूँ। उसके शोक में मेरी दुनिया अंधेर हो गई है। शेख शिबली ने फरमाया कि ऐसा मित्र जो मौत का शिकार हो जाए, निस्संदेह उसकी मित्रता जान के लिए दुख का कारण है। तू अब ऐसे मित्र में लौ लगा जो न मरे, बल्कि तू उसके विरह में घुल घुल कर मर जाए। यह भी कहा, हर की शुद्ध दर इश्के सूरत मुबतिला, हम अजा सूरत फतह दरसत बला। पृष्ठ संख्या 422। जूदस आसूरत रवत बैरू जे दस्त, ऊ अजा सूरत कनत दरखू ने शस्त। ख्वाजा फैदुद्दीन अत्तार, मंती कुत्तैर, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, पृष्ठ 146। अर्थात प्रत्येक प्राणी जो इश्के मजाजी लौकिक प्रेम में फंस जाए उसको ऐसे प्रेम के कारण हजारों कष्ट झेलने पड़ते हैं। इश्के मजाजी तो शीघ्र ही नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, तत्पश्चात दुखी होना पड़ता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने अपनी मसनवी की बादशाह का दासी पर आसक्त होना, उसे खरीद लेना और दासी का अस्वस्थ होना नामक कथा में भी एक बुजुर्ग का वर्णन किया है। जब दासी रुग्ण हो गई और उपचार से स्वस्थ न हो सकी तो बादशाह ने सच्चे हृदय से प्रार्थना की, दर मियाने गिरिया खावश दर रबूद दीद दर खाव ऊकी पीरे रू नमूद। मसनवी मौलवी मानवी पैराहने यूसुफी नवल किशोर प्रेस लखनऊ प्रथम भाग प्रथम कथा पृष्ठ 12। अर्थात रोते रोते जो वहाँ वह सो गया, ख्वाब में एक पीर मर्द उसको दिखा, वृद्ध पुरुष। उस वृद्ध महापुरुष ने बादशाह को शुभ समाचार दिया कि उसी की प्रार्थना स्वीकार हो गई है। हिंदी सूफी काव्य में भी देवता आदि के स्वप्न में दर्शन देने के कतिपय उदाहरण उपलब्ध होते हैं। ज्ञानदीप में नायक ज्ञानदीप नायिका देवजानी के प्रासाद की छत पर मंत्राभिषिक्त घोड़े के द्वारा कई रातों जाता है। महल के रक्षक नित्य ही घोड़े को छत पर उतरते देखकर देवजानी के पिता राजा सुखदेव से शिकायत करते हैं। राजा रात्रि के समय बाण द्वारा ज्ञानदीप को भूमि पर गिरा देता है और उसे एक काठ की पेटी में पृष्ठ संख्या 423 बंद करके नदी में बहा देता है। देवजानी को इससे बहुत व्यथा होती है और वह अग्नि कुंड में भस्म होने के लिए कूद पड़ती है, किंतु शंकर एवं पार्वती की कृपा से बच जाती है। उसी रात्रि को शंकर जी राजा सुखदेव को स्वप्न में दर्शन देते हैं और ज्ञानदीप को निर्दोष बताते हैं। इंद्रावती के आरंभ ही में नूर मोहम्मद कवि को कोई तपस्वी स्वप्न में दर्शन देता है। उसी तपस्वी द्वारा कवि को इस कथा की अंत प्रेरणा मिलती है। एक रात सपन मैं देखा सिंधु तीर वह तपी असरेखा, अह ठाड़ मोहिलीन बुलाई कहे सी कि सिंधु में बुढ़हू भाई। त्रसा छोड़ पोढ़ा कह हिया मोती काढ़हू होई मर्जिया। कवि नूर मोहम्मद इंद्रावती पहला भाग पृष्ठ 4। ख हिंदी सूफी काव्य में प्रयुक्त कतिपय विशिष्ट व्यक्तिगत कथानक रूढ़ियाँ। अब हम उन कथानक रूढ़ियों का उल्लेख करेंगे जो केवल भारतीय साहित्य की व्यक्तिगत रूढ़ियां हैं। सिंघल दीप। भारतीय कथाओं में सिंघल दीप के वर्णन की रूढ़ी पुरातन एवं सनातन है। सिंघल दीप के लिए लंका, सरनदीप, स्वर्णदीप, कदली देश, कजरीवन, रूपनगर, त्रिया देश, स्त्री देश कहा गया है। भूगोल का ठीक ज्ञान न होने के कारण कवि जायसी ने पद्मावत के सिंघल दीप वर्णन खंड में सरनदीप, स्वर्णदीप और सिंघल को भिन्न भिन्न द्वीप माना है। आचार्य शुक्ल ने इस विषय में टिप्पणी दी है कि अरब वाले लंका को सरनदीप कहते थे। जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 11 पाद टिप्पणी। अतएव यथार्थतः सरन, लंका और सिंघल एक द्वीप के ही विभिन्न नाम हैं। मीन चेतन एवं गोरक्ष विजय में इसका नाम कदली देश बताया गया है। आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी नाथ संप्रदाय इलाहाबाद 1950 पृष्ठ 54। बाद की पुस्तकों में इसे कजरी वन कहा गया है। डॉक्टर हजारे प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का आदिकाल पटना सन 1952 ईस्वी पृष्ठ 77 पृष्ठ संख्या 424। योगी संप्रदाय विष्कृति नामक एक परवर्ती ग्रंथ में सिंघल को त्रिया देश अर्थात स्त्री देश कहा गया है। एक मत्स्येंद्र नाथ के संबंध में प्रसिद्ध है कि वे किसी स्त्री देश में विलासिता में फंस गए थे और उनके सुयोग्य शिष्य गोरक्षनाथ ने वहां से उनका उद्धार किया था। दो भारतीय साहित्य में सिंघल देश की राजकुमारियों से पाणी ग्रहण के कई प्रसंगों के उल्लेख मिलते हैं। प्रोफेसर राम पूजन तिवारी के शब्दों में भारतीय आख्यान साहित्य की रूढ़ियों में राजा का चक्रवर्ती होने के लिए किसी राजकुमारी से विवाह करना बहुत पहले से चला आ रहा है। इसी प्रकार से राजाओं का सिंघल की राजकुमारी से विवाह, समुद्र यात्रा तथा जहाज का डूबना कथा साहित्य की एक प्रमुख रूढ़ी रही है। श्री हर्ष की रत्नावली तथा राजशेखर की कर्पूर मंजरी में यह भविष्यवाणी मिलती है कि उनकी नायिकाओं से जो राजकुमारियां हैं विवाह करने वाला चक्रवर्ती होगा। कुतूहल की लीलावती में कहा गया है कि उसके साथ जिसका विवाह होगा वह चक्रवर्ती राजा होगा। रत्नावली तथा लीलावती दोनों सिंघल कुमारियां हैं। 3 अपभ्रंश की कथाओं में भी इस कथानक रूढ़ी के आधार पर कथा काव्यों की नायिकाएं सिंघल दीप की पद्मिनी राख कन्याओं के रूप में चित्रित की गई हैं, यथा मुनि कनका भर की अपभ्रंश कृति करकंड चरियु में करकंडु दक्षिण के राज्य के अभियान पर गया तो वह सिंघल दीप भी पहुंचा और वहां की राजकुमारी रति वेगा से विवाह किया। चार एक क डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी नाथ संप्रदाय पृष्ठ 54 ख डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का आदिकाल पृष्ठ 77 दो वही तीन प्रोफेसर राम पूजन तिवारी हिंदी सूफी काव्य की भूमिका पटना सन 1930 ईस्वी पृष्ठ 57-58 चार मुनि कनकामर करकंड चरियु संपादक प्रोफेसर हीरालाल जैन बरार सन 1934 ईस्वी संधि 7 पृष्ठ संख्या 425। उपर्युक्त विवेचन के अनंतर कहा जा सकता है कि हिंदी सूफी कवियों से बहुत पहले सिंघल दीप को समुद्र मध्यवर्ती समझा जाता था और उसको पद्मगंधा तथा पद्मकाया पद्मिनी अथवा पद्मावती कन्याओं का देश माना जाता था। यह भारतीय कथाकारों के विचारों और नाच पंथ के परंपरागत विश्वासों का परिणाम था। जायसी भारतीय कथानकों की सिंघल दीप विषयक उक्त रूढ़ी से परिचित थे, अतः उन्होंने समुद्र के बीच स्थित सिंघल और वहां की पद्मावती पद्मिनी राजकुमारी और उसके रूप सौंदर्य का अत्यंत उल्लसित वर्णन किया है। राजा रत्नसेन चित्तौड़ से सिंघल देश के राजा गंधर्वसेन की पुत्री पद्मावती के वरण के लिए सात सागर पार करके गया था। पद्मावत का ऐतिहासिक आधार एवं पद्मावत सार की भूमिका में श्री इंद्रचंद्र नारंग ने भी इस संबंध में लिखा है, सिंघल दीप की लुभावनी यक्षिणियों के विषय में प्राचीन काल से चली आती जनश्रुति के आधार पर मध्यकाल में सिंघल की पद्मिनी नारियों की कल्पना हुई। उसी के अनुसार जायसी ने पद्मावती और उसकी 16,000 सुंदरी सखियों की मातृभूमि सिंघल होने की कल्पना की। उत्तर भारत के व्यापारियों को प्राचीन काल में सिंघल जाने पर उन यक्षिणियों से वास्ता पड़ा करता था। चित्तौड़ के व्यापारियों को सिंघल की पद्मावती का समाचार मिलने की कहानी में प्राचीन दंत कथा की परछाई है। इंद्रचंद नारंग पद्मावत का ऐतिहासिक आधार जालंधर सन 1956 ईस्वी पृष्ठ 53-54 श्री इंद्रचंद्र पद्मावत का सार भूमिका जालंधर पृष्ठ 46। यह सिंघल दीप कहाँ स्थित है इसके संबंध में विद्वानों का एक मत नहीं है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली की भूमिका में लिखा है, पद्मिनी क्या सचमुच सिंघल की थी? पद्मिनी सिंघल की हो नहीं सकती। यदि सिंघल नाम ठीक माने तो वह राजपुताने या गुजरात का कोई स्थान होगा। जायसी ग्रंथावली प्रस्तावना पृष्ठ 25। डॉक्टर गौरी शंकर हीरा चंद ओझा के विचारानुसार पृष्ठ संख्या 426 सिंघल चित्तौड़ के आसपास का कोई सिंगोली नामक स्थान होगा। उन्होंने लिखा है, रत्न सिंह लगभग एक वर्ष ही चित्तौड़ का राजा रहा, उसमें भी अंतिम 6 मास तो अलाउद्दीन के साथ लड़ता रहा। इसी स्थिति में उसका सिंघल लंका जाना, वहां एक वर्ष तक रहना और पद्मिनी को लेकर चित्तौड़ लौटना सर्वथा असंभव है। अतएव जायसी का सिंघल दीप सिंघल लंका का सूचक नहीं हो सकता। चित्तौड़ से करीब 40 मील पूर्व में सिंगोली नाम का प्राचीन स्थान है, जिसके विस्तृत खंडहर और प्राचीन किले के चिन्ह अब तक विद्यमान हैं। अतएव पद्मिनी का पिता सिंगोली का स्वामी होगा। सिंगोली और सिंघल दीप नाम परस्पर मिलते हुए होने के कारण पद्मावत के रचयिता ने भ्रम में पड़कर सिंगोली को सिंघल दीप मान लिया हो, यह संभव है। रत्न सिंह के राज्य करने का जो अल्प समय निश्चित है, उसे यही माना जा सकता है कि उसका विवाह सिंघल दीप अर्थात लंका के राजा की पुत्री से नहीं किंतु सिंगोली के सरदार की कन्या से हुआ होगा। नागरी प्रचारणी पत्रिका जिल्द 13 सम्मत 1989 विक्रम पद्मावत का सिंघल दीप स्वर्गीय डॉक्टर गौरी शंकर हीरा चंद ओझा ओझा निबंध संग्रह उदयपुर द्वितीय भाग पृष्ठ 281-282। डॉक्टर सत्येंद्र ने भी इसी मत का पोषण करते हुए लिखा है कि गंधर्व सेन तो गंधर्वों में ही हो सकता है, सिंघल में गंधर्व कहाँ? डॉक्टर सत्येंद्र मध्ययुगीन हिंदी साहित्य का लोक तात्विक अध्ययन आगरा सन 1960 ईस्वी पृष्ठ 285। अतएव पद्मावत में सिंघल दीप लंका एवं गंधर्व सेन नाम के राजा की कल्पना लोकवार्ता के कारण है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय में सिंघल के विषय में प्रमाणित किया है, पृष्ठ संख्या 427 कि यह हिमालय के पादेश में अवस्थित है। कुमायूं गढ़वाल के अंदर पड़ने वाला प्रदेश है। अंत में वे इसे कामरूप मानते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाथ संप्रदाय, इलाहाबाद, सन 1950 ईस्वी, पृष्ठ 55। प्रोफेसर राम पूजन तिवारी के शब्दों में उसे सिंघल को भौगोलिक स्थान मानना उचित नहीं होगा। प्रोफेसर राम पूजन तिवारी, हिंदी सूफी काव्य की भूमिका, पटना, सन 1960 ईस्वी, पृष्ठ 60। उपर्युक्त विवेचन के अनंतर निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि जायसी का समुद्र मध्य स्थित सिंघल द्वीप भारतीय कथा साहित्य से प्रभावित है और नाथ पंथ के परंपरागत विश्वासों पर आधारित है। कवि हुसैन अली कृत पहुपावती में भी सिंघल को पद्मिनी स्त्रियों का उत्पत्ति स्थान माना गया है। एक बार दशहरा के दिन सिंघल के समान वैभवपूर्ण काशीपुर नामक नगर का राजा माणिक चंद राजसभा में पद्मिनी स्त्रियों की चर्चा चलाता है। वार्तालाप के मध्य रत्नसेन एवं पद्मावती की प्रेम कथा का भी उल्लेख होता है। सभी को पद्मिनी स्त्रियों की स्थिति में शंका होती है। तभी एक विप्र राज दरबार में उपस्थित होता है और यह बताता है कि जम्बूद्वीप में पद्मिनी स्त्रियां नहीं होती, उनका उत्पत्ति स्थान केवल सिंघल द्वीप ही है। डॉक्टर सरला शुक्ल, जायसी के परवर्ती हिंदी सूफी कवि और काव्य, लखनऊ, संवत 2013 विक्रम, पृष्ठ 496। ख्वाजा अहमद कृत नूरजहां में सरन द्वीप के अंतर्गत किसी कल्पित ईरानगढ़ नामक एक नगर वर्णित है, परंतु इसका उक्त सिंघल से कोई साम्य नहीं है। शेख रहीम ने भाषा प्रेम रस में रूपनगर का वर्णन किया है, जहां की राजकुमारी चंद्रकला अत्यधिक रूपवती है। यह नगर कल्पना प्रभूत है, जहां नायक प्रेमसेन और नायिका चंद्रकला बाल्यकाल में एक साथ पढ़ते हुए स्वभावतः एक दूसरे की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। रूपनगर न तो पृष्ठ संख्या 428 सिंघल द्वीप की भांति समुद्र मध्य स्थित है और न ही यहाँ समुद्र यात्रा का आयोजन हुआ है। अतः ख्वाजा अहमद एवं शेख रहीम ने सिंघल द्वीप संबंधी कथाओं की भित्ति पर कल्पना और संभावना के सहारे ईरानगढ़ तथा रूपनगर का चित्रण नहीं किया है। कामरूप की कथा में भी सरन द्वीप का उल्लेख है, जहाँ की राजकन्या कामकला अत्यंत लावण्यमयी है। उसको हस्तगत करने के लिए अवधपुर का राजकुमार कामरूप समुद्र को पार करके और अनेक कष्ट सहने के पश्चात वहां अपनी प्रेमिका को पाने में समर्थ होता है। जलयान ध्वंस। जल यात्रा करते समय नौका या जलयान का किसी तूफान में ध्वस्त हो जाने और नायक एवं नायिका का अलग अलग दो विपरीत दिशाओं में बह जाने की कथानक रूढ़ी का सूफी प्रेमाख्यानकों में परंपरागत प्रयोग हुआ है। इस कथानक रूढ़ी का व्यवहार कथा को गति और विस्तार देने के निमित्त होता है। पद्मावत में पद्मावती से विवाह कर लेने के पश्चात रत्नसेन एक वर्ष तक सिंघल द्वीप में रहता है। एक दिन वह एक विहंग द्वारा नागमती की दुख कथा और चित्तौड़ की दयनीय दशा का वर्णन सुनकर व्यग्र हो उठता है। तत्पश्चात वह अपने देश की राह लेता है। मार्ग में उसे समुद्र पार करना है, अतएव यात्रा जहाजों द्वारा होती है। सहसा सागर में तूफान उठता है, जिससे जहाज दक्षिण लंका की ओर बह जाते हैं। वहां विभीषण का एक वृद्ध राक्षस नाविक मछली मार रहा होता है। वह सहायता के बहाने सब जहाजों को एक भयंकर भंवर में ले जाता है। जहाज आवर्त विवर्त में फंस कर टूक टूक हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप जहाज के एक तख्ते पर एक ओर राजा बह जाता है और दूसरे तख्ते पर दूसरी ओर रानी। बोहित टूक टूक सब भय, एहू न जाना कहाँ चली गए। भय राजा रानी दुई पाटा, दुनो बहे चले दुई बाटा। जायसी ग्रंथावली पद्मावत देश यात्रा खंड पृष्ठ 175 पृष्ठ संख्या 429। मंजन कृत मधुमालती में राजकुमार मनोहर के माता पिता अपने वृद्धावस्था की ओर संकेत करते हुए उसे बहुतेरा कहते हैं कि वह उन्हें छोड़कर न जाए, किंतु कुमार उनकी एक नहीं सुनता है और मधुमालती की खोज में निकलने के लिए योगी का वेश धारण कर लेता है। सवेरा होने पर कुमार दल तथा परिग्रह के साथ चल पड़ता है। चलते चलते वे सब एक अगम्य अथाह और गंभीर समुद्र के तट पर आ जाते हैं। कुमार सबको लेकर जलयान पर चढ़ता है। 4 मास तक समुद्र में यात्रा करने पर जलयान भारी एवं भीषण भंवर में जा पड़ता है और खंड खंड हो जाता है। समस्त इष्ट मित्र जन परिजन तुरग तुखार आदि ध्वस्त प्राय होकर अतल तल में डूब जाते हैं। विधाता की कृपा से कुमार के आगे एक लकड़ी का टुकड़ा उतराता है, उसे डूबता हुआ कुमार पकड़ लेता है और बच जाता है। विधि पर साधु कुंवर के आगे काठ एक उतिरान, बूढ़त राज कुंवर गही पकड़ा, जात रहा घट प्राण। मंझन कृत मधु मालती, संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, इलाहाबाद, छंद 178 पृष्ठ 150। चित्रावली में भी सुजान की नौका सात भंवरों में फंसती है परंतु बच निकलती है। सुजान अपने माता पिता तथा कमलावती, सुजान की पहली रानी, पहले वह सागरगढ़ की राजकुमारी थी, का स्मरण करके रूपनगर के राजा नायिका चित्रावली का पिता से विदा मांगता है। वह चित्रावली के साथ चल पड़ता है। मार्ग में कमलावती को लेता हुआ अपने घर की ओर अग्रसर होता है। समुद्र में नौका पर सवार होता है। तूफान उठता है। नौका का भार हल्का करने के लिए बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं समुद्र में फेंक दी जाती हैं। यात्रा के साथ भंवरों के संबंध में कवि उस्मान इस प्रकार लिखते हैं। रैनी एक बादर जुरी आए, दोह दिसी होई रिखी साथ छपाए, मार्ग भूला केवट डरा, बोहित जाए भौर बिच परा, भवें लाग तहां बोहित भारी, कुंवर कहा कछु देहु अडारी, जाके आहा संग कछु भारा, पल ही ते सब रूप अडारा, हरुआ होई बोहित अगुसरा, दूजे भौर जाई कै परा। पृष्ठ संख्या 430। जहां लहू आहा सोन करनाऊ, सो सब डारी दीन तेहि ठाऊ, तीजे भौर जहां न गहीरा, चौथे अन जाकर नर कीरा, पंचय भौर भयो शेष नर, अंत जादि पुनि मीच, कुंवर जियन जिय सौरी के, परे कूदि जल बीच, छटए भौर मरण निज हेरी, साहस बांध गिरी सब चेरी, सतए भौर जो आई तुलाना, कौलावती कर जीव अकुलाना। उस्मान चित्रावली, बोहित खंड, छंद 4-5 इत्यादि। हंस जवाहिर में भी नायक जवाहिर इस प्रकार के कष्ट सहन करते हुए समुद्र पार करता है। कामरूप की कथा डॉक्टर सरला शुक्ल जायसी के परवर्ती हिंदी सूफी कवि और काव्य, लखनऊ संवत 2013 विक्रम, पृष्ठ 575-76 में नायक कुंवर कामरूप नायिका कामकला की खोज में सरनदीप की ओर अग्रसर होता है। मार्ग में उसको राजा करण का राज्य मिलता है। राजा कंवर करण कुंवर को समझाता है और मार्ग के अथाह समुद्र का स्मरण करा के आगे जाने से रोकता है। कुंवर मार्ग के व्यवधानों की उपेक्षा करता हुआ एक जहाज पर अपने सातों साथियों के साथ प्रस्थान करता है। कई दिनों की यात्रा के पश्चात कुंवर को सरनदीप दिखाई देता है, किंतु उस समय प्रतिकूल वायु चलने के कारण जहाज विध्वंसित हो जाता है। आठों साथी एक तख्ते पर बैठकर समुद्र में बह जाते हैं। वह तख्ता भी टूट जाता है। इस प्रकार सब साथी एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं। नायक के पिता का पुत्र न होने से चिंतामग्न रहना, पिता के जप तप दान पुण्य या किसी सिद्ध पुरुष के आशीर्वाद के फलस्वरूप नायक का उत्पन्न होना, हिंदी सूफी प्रेमाख्यानों में यह एक अत्यंत प्रचलित रूढ़ी है। शेख कुतुबन कृत मृगावती में चंद्रगिरी के राजा गणपति देव पर लक्ष्मी की असीम कृपा थी, किंतु कोई संतान न थी। राजा अत्यधिक चिंतित रहता था। उसके प्रचुर दान पुण्य तथा तप करने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राजकुमार रखा गया। यही मृगावती का नायक है। पृष्ठ संख्या 431। जैसे कृत चित्र रेखा में कन्नौज नगर के राजा कल्याण सिंह के पास अपार पदाति हस्ती आदि सेनाएं थीं। वह सब प्रकार से प्रसन्न था, किंतु पुत्र रत्न के बिना परम दुखी था। उसने घोर तप किया, जिसके फलस्वरूप राज मंदिर में पुत्र उत्पन्न हुआ। मंझन कृत मधुमालती में कनागिरी गढ़ नाम का सुंदर नगर था, जहाँ का राजा सूरजभान था। उसके पास अन्न धन हय गज रानियां भंडार आदि अगणित थे, परंतु पुत्र दीपक के बिना उसके लिए संसार अंधकार पूर्ण था। इस बीच एक तपस्वी वहां आया। 12 वर्षों तक राजा ने उसकी टहल सेवा की, तो उसने ज्योनार करके एक पिंड प्रदान किया, जिसे राजा ने अपनी पटरानी को खिलाया। परिणाम स्वरूप यथा समय उस रानी के गर्भ से राजकुमार का जन्म हुआ। पंडितों ने उसके ग्रह नक्षत्र आदि का विचार करके उसका नाम मनोहर रखा। उस्मान कृत चित्रावली में नेपाल देश के राजा धरणीधर तथा रानी हीरा संतति विहीन होने के कारण अत्यंत चिंतित रहते थे। एक दिन निपट निराश होकर राजा ने वैरागी होने की ठानी। वह घर छोड़कर तप के लिए जंगल को जाने लगा, तो उसके मंत्रियों ने उसे घर ही पर शिवाराधना और दान पुण्य करने का सत्य परामर्श दिया। शिव पार्वती ने आकर परीक्षार्थ उससे सिर मांगा। राजा सिर देने को तैयार हो गया। शिव पार्वती ने एक पुत्र होने का वरदान दिया जो योग साधेगा और किसी स्त्री से प्रेम भी करेगा। पुत्र हुआ, उसका नाम सुजान रखा गया। इसी प्रकार शेख नवीकृत ज्ञानदीप में निमशार मिस्र के राजा शिरोमणि के यहाँ शंकर की कृपा से ज्ञानदीप उत्पन्न हुआ। कवि कासिम शाह कृत हंस जवाहिर में बलख नगर के शासक बरहान शाह की 31 सुंदर रानियां थीं। उसका राज्य भी संपन्न एवं समृद्ध था, परंतु पुत्र के अभाव में वह व्यथित रहता था। एक दिन अत्यंत विकल होकर वह घर छोड़कर निकल गया। मार्ग में उसे हजरत खिज्र ने दर्शन दिए, जिन्होंने शाह को पुत्रोपलब्धि का आशीर्वाद दिया। फलस्वरूप यथा समय पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ जो हंस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ख्वाजा अहमद कृत नूर जहाँ में ईरानगढ़ नामक नगर के सुल्तान मलिक शाह एवं उसकी महिषी नूरता पुत्र भाव में चिंता मग्न रहते थे। एक दिन पृष्ठ संख्या 432 सुल्तान परम दुखी होकर घर से निकलकर जंगल में किसी नदी के तट पर तप करने लगा। वहां दस्तगीर नामक पीर ने उसे एक सुंदर पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। सुल्तान अपने घर लौट आया और यथा समय उसके अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम खुर्शेद शाह रखा गया। कामरूप में अवधपुर के राजा राजपति पर लक्ष्मी की अपार कृपा थी, परंतु संतानहीन होने के कारण वह और उसकी रानी सुंदर रस रूप चिंतित रहते थे। एक दिन अत्यधिक व्यतीत होकर राजा ने बैरागी होने का निश्चय किया, परंतु करमचंद मंत्री ने उसे दान पुण्य करने की सलाह दी। एक दरवेश ने प्रसन्न होकर एक श्रीफल प्रदान किया और संतानोत्पत्ति का आशीर्वाद दिया। रानी सुंदर स्वरूप ने वह फल खा लिया। निश्चित समय पर पुत्र लाभ हुआ जो कुंवर कामरूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पार्वती और महादेव। भारतीय कथा साहित्य में पात्र स्वरूप देवी देवता अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। देवी देवताओं में पार्वती और महादेव सर्वाधिक प्रख्यात हैं। हिंदी सूफी कवियों ने पार्वती महादेव की प्राचीन कथानक रूढ़ी का जी खोलकर उपयोग किया है। सूफी प्रेमाख्यानों में ये नायक एवं नायिकाओं तथा उनके माता पिता की सहायता करते हैं, आशीर्वाद एवं वरदान प्रदान करते हैं। ये प्रेमी युग्मों की परीक्षा लेते हैं और कभी दिवंगत प्रमुख पात्रों और पात्रियों को जीवन प्रदान करते हैं। संक्षेप में ये विपत काल में उनके संरक्षक एवं सहायक होते हैं। जब ही वे इनके आगे हाथ फैलाते हैं, ये हाथों हाथ उनका हाथ पकड़ते हैं। सुमन तथा मल्लिक ने लिखा है कि पात्रों के कार्यों की दिशा निर्धारित करने में देवताओं का हाथ रहता है। श्यामचंद्र सुमन एवं योगेंद्र कुमार मल्लिक, साहित्य विवेचन, दिल्ली, सन 1952 ईस्वी, पृष्ठ 77। जयसी कृत पद्मावत में पार्वती महादेव निम्नलिखित चार अवसरों पर प्रकट होते हैं। एक, शिव मंदिर से पद्मावती के जाने के अनंतर चेत आने पर जब पृष्ठ संख्या 413 रत्नसेन आत्महत्या करना चाहता है तो महादेव कोढ़ी के वेश में नंदी पर आरूढ़ होकर राजा के पास आते हैं। उनके साथ पार्वती और बंदर के वेश में हनुमान भी होते हैं। दो, वहीं शिव मंदिर में अप्सरा वेश में पार्वती रत्नसेन के प्रेम की परीक्षा लेती है। राजा परीक्षा में शुद्ध कांचन सा खरा उतरता है, अतः पार्वती महादेव से कहती हैं, निहचे एही बिरहानल दहा, निहचे यह ओही कारण तपा, परिमल प्रेम न आछे छपा, निहचे प्रेम पीर यह जागा, कसे कसौटी कंचन लागा। तीन, तत्पश्चात रत्नसेन देखता है कि इस कोढ़ी की छाया नहीं पड़ती है, इसके शरीर पर मक्खियां नहीं बैठती हैं और इसकी पलकें नहीं गिरती हैं। इस पर वह मन में कहता है कि यह निश्चय ही कोई सिद्ध पुरुष है। फिर महादेव को पहचान कर वह उनकी वंदना करता है। महादेव उसे सिद्धि गुटिका देते हैं और सिंघल द्वीप में घुसने का मार्ग बताते हैं। चार, रत्नसेन राजा गंधर्व सेन के दुर्ग पर आक्रमण करता है। राजा गंधर्व सेन के यहाँ यह विचार होता है कि जोगियों को पकड़ कर सूली दे दी जाए। दल बल के सहित सब सरदार जोगियों पर चढ़ाई करते हैं। अंततः जोगियों सहित रत्नसेन पकड़ा जाता है। सूली चढ़ा देने की आज्ञा होती है। इसी बीच भाट भाटिन वेशधारी महादेव पार्वती उपस्थित होते हैं। पद्मावती के माता पिता उन्हें पहचान लेते हैं। वे अत्यधिक धूमधाम से रत्नसेन के साथ पद्मावती का विवाह कर देते हैं। उस्मान की चित्रावली के आरंभ ही में निस्संतान राजा धरणीधर शिव आराधना एवं दान पुण्य करता है। उसके दान की प्रशंसा शिवलोक तक पहुँचती है। पार्वती सहित शंकर उसकी दृढ़ता एवं एक निष्ठता की परीक्षा लेने के लिए तपस्वी वेशधारी शंकर पार्वती वहाँ प्रकट होते हैं और सिर की भेंट मांगते हैं। राजा सिर को दान के रूप में देने के लिए पृष्ठ संख्या 414 तत्पर हो जाता है। वे उसकी दृढ़ता को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और स्वयं अपने अंश को राजा के यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित होने का आश्वासन देते हैं। यथा समय राजा के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। उस्मान चित्रावली काशी नागरी प्रचारणी सभा सन 1912 ईस्वी छंद 48। यही गुणशाली एवं कुशाग्र बुद्धि चित्रावली का नायक सुजान है। कवि शेख नबी ने ज्ञानदीप में पार्वती महादेव की इस भारतीय कथानक रूढ़ी का प्रयोग सुंदर महत्वपूर्ण ढंग से किया है। ज्ञानदीप में सर्वप्रथम शंकर निमशार महिस्त्र के संतति विहीन राजा शिरोमणि की सहायता करते हैं। उनकी असीम एवं अपार कृपा से राजा के यहाँ योग्य एवं प्रतिभाशाली पुत्र उत्पन्न होता है। यही कथा का नायक ज्ञानदीप है, जिसका नाम बाद में खूब चमकता है। ज्ञानदीप में निम्न अवसरों पर भी पार्वती महादेव सहायता करते हैं। एक, जब देवजानी नायिका और सुर ज्ञानी नायिका की सखी दोनों ही अपनी समस्त चेष्टाएं करके ज्ञानदीप को वश मिलाने के लिए असफल रहती हैं, तो देवजानी निपट निराश होती है और उसके आंसुओं का तार बंध जाता है। तत्पश्चात सुर ज्ञानी कागज का मंत्राभिषिक्त घोड़ा बनाती है। पार्वती उस घोड़े को जीवन प्रदान करती हैं। इसी घोड़े पर ज्ञानदीप को उसकी कुटी से देवजानी के प्रसाद की छत पर लाया जाता है। दो, जब देवजानी के पिता राजा सुखदेव को पता चलता है कि ज्ञानदीप रात्रि के समय अश्वारोही होकर महल की छत पर देवजानी से भेंट करता है, तो राजा उसे बंदी बना देता है। अंत में राजा उसे काठ की एक पेटी में बंद करा के नदी में प्रवाहित करा देता है। यह सुनकर देवजानी अत्यधिक दुखित होती है और अग्नि कुंड में अपने आप को भस्म कर डालने का प्रयत्न करती है, परंतु पार्वती महादेव की कृपा से बच जाती है। तीन, फिर उसी रात्रि को महादेव राजा सुखदेव की ज्ञानदीपों की निर्दोषता का पता स्वप्न देते हैं। इस प्रकार दोनों प्रेमियों के पुनर्मिलन का श्रेय इन्हीं को है। पृष्ठ संख्या 435। नूर मोहम्मद की इंद्रावती में नायिका रत्नजोत इंद्रावती का जन्म शिवाराधना के पश्चात उन्हीं की कृपा से एक रत्न से होता है। वह आगमपुर के राजा गजपति के अंधेरे घर का उजाला करती है। नूर मोहम्मद इंद्रावती स्वप्न खंड कुंवर पृष्ठ 16-17।